वाला को सलाह देने के लिए एक संदेशा भिजवाया एक दूत के द्वारा। तो दूत से कहा कि भाई तुम जाओ चुपके से। तो दूत यदि गाड़ी से जाता, पांच आदमी में होके जाता तो पता लग जाता कंस के चारों तरफ खुफिया लोग घूम रहे थे। तो कहां जाता है, कहां जाएगा, ये सब पता अगर कंस लगा लेता तो ठीक नहीं। ये सोचकर वसुदेव जी ने कहा कि तुम नहाने जाओ, तड़के ही नहाने जाओ जमुना में, और जमुना जी पार करके तैर करके तुम निकल जाओ वहां पर, और वहां भी सूर्योदय से पहले ही पहुंच जाना कि जिसमें चुपचाप तुमको वहां भी कोई न पूछ सके न जान सके भी कहां से आए हो क्यों आए हो, और जाके समाचार कह देना, आपकी तरफ कोई हर्ज नहीं। तो इस प्रकार से वो संदेशा लेकर के दूत पहुंचा। तो उस समय भी अंधेरा ही था, तो वो आया और आकर के चुपचाप वो नंदबाबा के यहां पहुंच गया। तो नंदबाबा जो है उस दिन ये रोज प्रातः काल ये भगवान नारायण का पूजन करते थे, इनके घर में नारायण की पूजा थी, उपासना थी। नंद बाबा भी यशोदा मैया भी बड़ी भक्ति के साथ नारायण की पूजा किया करते, तो ये पूजा में थे। पर इनकी पूजा का ढंग पलट गया। अब तक तो पूजा में इनका मन लगता था, अब जिसकी ये पूजा करते हैं वो स्वयं अंशी इनके घर आ गया बालक रूप में। इष्ट देव का ध्यान कर रहे थे, दिन भर तो बंधु बांधवों का स्वागत किया, सत्कार किया, आनंद नृत्य में योग दिया, नाचे गाए, अपरिमित धनराशि लुटाई। अब एकांत में उपासना के समय ये बैठे, तो आज का ध्यान उनका अनोखा हो गया। अब ध्यान करने लगे ये भगवान नारायण के मकर कुंडल ज्योति से उद्भाषित भगवान के कपोलों का, और इन्हें ध्यान आ गया वो अभी जो 6:30 पहले जो इनके घर में प्रकट हुआ है उसके कोमल कोमल कपोलों का। अब वो भगवान नारायण की नासिका के बदले किसी की नासिका, इसी के नेत्र, इसी की वो कुंतल केश राशि, घुंघराले बाल छोटे छोटे से, ये नवीन नील कमल के समान इसका वर्ण श्यामल, बस यही इनके ध्यान में आ गया बड़ी चेष्टा की। ये सबसे पहला अवसर है नंद के जीवन में, कहते हैं आनंद वृंदावन चप्पूकार कहते हैं कि नंद के ब्रजेश के जीवन में सबसे पहला अवसर है कि वे नारायण में तन्मय नहीं हो सके। सारी वृत्तियों को हटाने की चेष्टा के, पर वृत्ति तो हटेगा लग चुकी थी, वृत्ति कहीं बिखरी नहीं थी। बिखरी वृत्ति हो तो वृत्तियों को साधक योगी बटोरता है, और बिखरी हुई वृत्तियों को बटोर कर ध्यान की वस्तु में एकाग्र करता है। पर इनका ध्यान तो कहीं लगा हुआ है, सारी वृत्ति लगी हुई है, सोचा कि अब तो नहीं होगा, तो नारायण नारायण का स्मरण करके हाथ जोड़ के उठे, देखे तो सामने खड़ा है दूत, नीले कपड़े पहने हुए, तमाम धोती पानी में भीग रही, वो कुर्ता भीग रहा, और ये जान गए पहचान गए पहले का देखा हुआ था। तो डरे कि भाई ये क्यों ऐसे आया, बोले भाई सब कुशल तो है ना। तो दूत ने कहा हाँ कुशल तो है ही, पर जब तक कंस जीता है तब तक पूरी कुशल तो कहाँ है। तो उसने बताया कि अभी 7 पहर पहले की बात है, कंस के कारागार में महाराज की देवकी ने कन्या को जन्म दिया, और उस कन्या को कंस देवकी रोती रही छीन लाया, चट्टान पर उसे पटका, पटकते ही वो ऊपर उड़ी और योग माया देवी हो गई, और उस देवी ने इस प्रकार से कंस को बहुत जोर से धमकाया, पर कंस का पाषाण हृदय, उसके हृदय में दया का लेश कहां। तो कंस ने देवकी की भर्त्सना की और लपक करके उस कुसुम सुकुमार जो बालिका रही, सद्योजात बालिका अभी के पैदा हुई, उस बालिका को छीन लिया और वो जब देवी होकर के उसने कहा कि तू मुझे मार के क्या करेगा, तेरे जीवन को समाप्त कर देने वाला तो तेरे पूर्व जन्म का बैरी उदय हो चुका, प्रकट हो चुका। तब वो डरा और फिर उसने तमाम दैत्यों को इकट्ठा किया, मंत्रणा की और मंत्रणा करके ये तय हुआ कि नगरों में, ग्रामों में, ब्रजपुरों में जहां जहां पर नए बालक हुए हैं, सारे बालक 10 दिन के हों या अधिक आयु के हों, तमाम मार दिए जाएं। इस प्रकार से सलाह मशविरा करके और उसने तय कर लिया, सब तरफ राक्षस भेज दिए गए और संहार भी प्रारंभ हो गया। इसलिए वसुदेव जी ने कहलाया है कि दो बात करनी है, एक तो सावधान रहना है, किसी प्रकार से भी कोई भी अनजान आदमी महल में घुस न जाए, और दूसरी बात है कंस को जरा राजी करना है। तो ये कंस के का करद राज्य था, नंद बाबा का कर देते थे, हर समय हर साल लगान देते थे, उपहार देते थे। तो कहलवाया कि अब की बार आदमी न भेजें, स्वयं नंद जी जरा कुछ विशेष उपहार लेकर के, भाई समय पर दुष्ट की भी खुशामद करनी पड़ती है, तो इसमें बुरा न मानकर और स्वयं उपहार लेकर के जरा विशेष स्वयं नंद जी आ जाएं और कंस को प्रसन्न करें, ये दो बात कहलवाने के लिए उन्होंने मुझको भेजा है। तो उपनंदादि को भी सबको बुला लिया, सलाह हुई कि भाई बात तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब नंद बाबा के मन में धुकधुकी ये कि इसको छोड़ के कैसे जाए, एक तो छोड़ा न जाए और दूसरे पीछे से कुछ हो जाए। तो उपनंदा जी ने कहा कि नहीं नहीं तुम जाओ, हम लोग सब देखेंगे, सब काम करेंगे, कोई बात नहीं है, तुम जल्दी से हो आओ। अब ब्रजेंद्र ने, नंद बाबा ने अपने हाथों उसके गीले कपड़े उतरवाए और उसको अच्छी तरह से दूसरे कपड़े पहनाए, अंदर ले गए, खाने पीने को दिया, भोजनागार में ले गए, सुलाया। इस प्रकार दूत का काम हुआ। इधर इधर क्या हुआ कि ये भीड़ मच रही थी तो सब लोगों ने कहा कि हम तो देखेंगे, लल्ला को देखेंगे। तमाम ब्रजमंडल में दूर दूर के गांवों तक में समाचार पहुंच गया, नंद बाबा के लाला हुआ है। तो उस लाला को देखने के लिए सभी लालायित हो गए, सबके मन में लाला को देखने की आ गई, कैसे लाला को देखें। यहां मंत्रणा ये हुई, उपानंद जी ने सलाह दी कि भैया बात तो ठीक है, सब देखना चाहते हैं, पर इसी भीड़ में अगर कोई राक्षस आ गया, कहीं कोई ग्वाला बन के, अहीर बन के, तो मुश्किल होगी ना, तो ये आयोजन पीछे पर रखो। अभी तो जो गिने चुने लोग हैं उन्हीं को बुला लो, जिसको हम जानते हैं उनको बुला करके लाला को दिखा दो, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो ये कुल मर्यादा रही, तो कुल मर्यादा के पालन के लिए भी सबको, भाई बंधुओं को तो षष्ठी का उत्सव होगा ना, तो बुलाना आवश्यक था, तो सारे गोपों को बुलाया, जो जो खास खास लोग थे उनको। लेकिन महाराज निमंत्रण कौन मानता आज, सबके मन में ये उत्साह कि नंद रोकेंगे थोड़े ही, आज हम लाला को देखने जाते हैं, और नंद बाबा कब का भी ये साहस नहीं कि किसी को रोक सकें। तो बस भीड़ लग गई। वो कहते हैं गोपाल चंपूकार बड़े सुंदर बात कि जैसे किसी सुंदर सरोवर में, सुंदर सरोवर के वक्षस्थल पर अगर कोई बढ़िया से बढ़िया कमल खिल जाए, ऐसा कमल जो रस से भरा हो, तो उस विकसित कमल को देख करके जैसे मधुलुब्ध भ्रमरे चारों तरफ से आ जाते हैं बिना बुलाए उड़ उड़ करके, कौन आह्वान को देखता है। इसी प्रकार ये नंद बाबा के घर रूपी इस हृदय में जो ये परम कमल कुसुम उत्पन्न हुआ, इसका रस लेने के लिए और भ्रमरावली दौड़ी। तो है ही ये आज ये नंदकुल सरोवर में, नंदकुल सरोवर में अनुपम सौरभशाली ये नील पद्म का जो विकास हुआ है, तो रस लोभी तमाम अधिकुल जो हैं व्याप्त सातमुत्र षटपद गणा नाकार आत्मना दौड़े आए, सब भीड़ लग गई। अब वो नंद नंदन को अपनी गोद में लिए, वृद्धा उपनंद पत्नी मणिस्तंभ के सहारे बैठी, उसकी दाहिनी ओर जरा सा घूंघट निकाले, बड़े बूढ़े आ रहे हैं ना आज तो, अब गुंठनवती घूंघट निकाले बजरानी जी बैठी, और बजरानी के ठीक समीप में ही रोहिणी जी, ये रोहिणी जी घर के मालिक हैं आज, ये रोहिणी जी बैठी सुशोभित हैं, और इन तीनों को सब ओर से घेरे हुए ये ब्रज की वयोवृद्धा जो देवियां हैं यशोदा मैया के समवयस का, ये तमाम बैठी मंगल गीत गा रही हैं। और उपनंद जी अपनी पत्नी के बाईं ओर बड़ी विनम्र मुद्रा में खड़े हैं, और उनकी बाईं ओर ब्रजेंद्र श्री नंद बाबा अंजलि बांधे, सबको स्वागत करना है ना आने वालों को, तो हाथ जोड़े खड़े हैं सबके सामने, हाथ जोड़े खड़े हैं, और तमाम भीड़ लग रही है गोप द्वार तक, तमाम भीड़ पंक्ति लगी है, जैसे यहाँ राशन की दुकान पर लगती है तो थोड़ी लगती है, इसमें लिखा है कि गोपों की अपार पंक्तियां खड़ी, पंक्तियां पंक्तिबद्ध हो गए ना, ठीक व्यवस्था पूर्वक न काम करना है, एक पंक्ति जब आगे बढ़ती है दूसरी पीछे, 38 प्रकार से पंक्तिबद्ध होकर व्यवस्था पूर्वक सब दर्शन कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल तो ये हो गई कि हटे कौन, जो आगे पंक्ति आई और जिसकी आंख पड़ी उस नीलमणि पर, उसकी आंख तो वहीं अटक गई, वहीं स्थिर हो गई आंख, आंख हटना चाहती नहीं तो बदन हटे कैसे। तो उपनंद जी महाराज हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि देखिए पीछे वाले जरा जल्दी कर रहे हैं, आप जरा सा दया करिए, तो देख चुके, बोले हाँ हाँ जाते हैं ना, तो क्या बिगड़ता है इसमें। तो इस प्रकार से सबकी आंखें लग गई, कोई हट तक कोई आंख हटती नहीं, और जो जाते हैं वो भी बार बार ये घुमा घुमा करके अपने मुख को, और सरोने शिशु का वो जो मुख मंडल है वो देखते चले जाते हैं अतृप्त नयनों से, अतृप्त हृदय से, भला उनको देख करके किसकी आंखें तृप्त हो जाए, ऐसी कौन अभागी आंखें हैं जो उस श्याम सुंदर शिशु को देख करके तृप्त हो जाए, जो कह दे कि अब हमने देख लिया, अब तो ये देखते देखते रूपवासी हो गया है, ये नहीं ये कभी किसी की आंख नहीं। तो लौटते हुए ही पीछे पंक्ति वाले जो है ना सब आतुर हो रहे हैं, तो पूछते हैं कि गोपालचंद्र को बनाना, पूछते हैं तुमने देख लिया देखा तुमने, तुम बड़े भाग्यशाली हो भाई, अच्छा कैसा है वो जरा बताओ, तो कैसा है जरा बताओ। यूं पूछते पूछते बाणी गदगद हो जाती है, कंठ भर आते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, आंखें भर आती हैं, देखने वालों की आंखें भर आती हैं। तो भरी हुई आंखें, यहां तो सब सजीव है ना, यहां तो सब के सब चिन्मय हैं, सबकी आंखें चिन्मय, तो वो चिन्मय आंखें मानो संकेत से कहती हैं, अरे मेरे स्वामी के सखाओ, ये देखने वाली तो मैं हूं, और इस अप्रतिम सौंदर्य को मैंने देखा है, आंख कहती है मैंने देखा है, देखने वाली तो मैं हूं, पर क्या कहूं मुझको बोलने की शक्ति दी नहीं उसने, नहीं तो मैं बताती कैसा है, ये जबान क्या बतावे कैसा, इसने देखा नहीं। देखा है मैंने और मुझ में बोलने की शक्ति नहीं, तो मैं अपनी दीनता पर रोती हूँ। आंखों से आंसू आ गए ना, तो आंखों ने कहा कि इस दीनता पर मेरे में बोलने की शक्ति नहीं, मैं बखार नहीं सकती। उस रूप को मैं हृदयंगम तो कर लिया पर मैं बोल नहीं सकती, इसलिए मैं रो रही हूँ। और अब तुम जाओ, तुमको भी दर्शन होंगे इस मेरे द्वारा ही, तो जाओ तुम जाके देखो कितना सुंदर है, कोई बता नहीं सकता। उस सौंदर्य का कोई वर्णन करे ऐसा जगत में कोई आज तक हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं। इस प्रकार से तमाम भीड़ चली आ रही है, पंक्ति के बाद पंक्ति देख रही है कितने में पौर्णमासी देवी आई। पौर्णमासी देवी आई साथ में उनके वो मधुमंगल शाही जो भगवान का सखा रहेगा पीछे। तो ये आई, इसने आकर के इसको देखती, तमाम भी तो बस भी नहीं रही, और नंद बाबा को समाचार देने के लिए पहले आई थी कि अब तुम्हारे घर में श्याम सुंदर आने वाले हैं। तो ये जब आई तो सब लोग हट गए। मृगेश्वरी ने नमन किया, चरणों में प्रणाम किया, और फिर धीरे धीरे उस इंद्र नीलमणि को उठाकर छोटे से शिशु को और पूर्णमासी देवी के चरणों पर रख दिया। पूर्णमासी देवी बैठ गई और यशोदा नंदन के सिर पर हाथ रख दिया। उसी समय ये मधुमंगल जो रहा, ये बड़ा रसीला, बड़ा विनोदी, इसी के नाम मनसुखा पड़ा। तो बड़ा विनोदी ये मधुमंगल, और ये सब देखता जानता था। इसने कहा, अरे अरे नंदरानी जरा देख तो सही ऊपर क्या तमाशा हो रहा है। उसको दिखाई दिया, तमाम देवता अपने अपने वाहनों पर सब सवार हुए, ऊपर से तमाम स्तुति कर रहे थे, तमाम हाथ जोड़े खड़े थे। तो मधुमंगल ने कहा, अरे भैया देख तो सही, ये देख हंस, और ये देख वृषभ, और ये देख मयूर, और ये देख हाथी, और ये रथ, और ये गरुड़, देख तो सही तू, ये सब न मालूम ये कितने बाहर है, और इनके पास देख से ये कौन कौन सवार, देख कोई 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 चार मुंह है, और कोई के पांच मुंह है, और कोई कैसा, कोई नीला है, और कोई पीला है, और कोई लाल है, कोई सफेद है, कोई भस्मी रमाई हुई है, और देखिए कोई कोई चार हाथ वाला, कोई छह हाथ वाला, कोई छह मुंह वाला, ये न मालूम ये कौन कौन है, देख। और बोले, मैंने पहले भी देखा था। मधुमंगल ने सुनाया अपना अनुभव कि मैंने पहले भी देखा था, एक बार जब ये होने वाला था तभी ये लोग आए थे देवताओं से स्तुति करने के लिए, तो वाहनों को छोड़ करके और कारागार में पहुंचे थे ये। तो इसने कहा कि मैं इस ब्रजमंडल के आकाश में इनको उड़ते हुए पहले भी देख चुका हूं, और आज तो ये सब खड़े हो गए। तो ब्राह्मण कुमार की बात सुनकर गोपिकाएं और नंदरानी ऊपर देखने लगी, इन्हें कुछ दिखा नहीं। तो नंदरानी के मन में भय आ गया कि कहीं कोई राक्षस ना आ गया हो, वात्सल्यमयी है ना। तो पूर्णमासी देवी ने जब आंखें खोल करके कहा कि भय की कोई बात नहीं, ये अंतरिक्ष में देवता सब रहा ही करते हैं, आया क्या, ये तो मधुमंगल बच्चा है, अंतरिक्ष में देवता सब रहा करते हैं, और इसके जरा दिव्य दृष्टि का उन्मेष हो गया होगा, उसने उनको देख लिया है। यूं कहकर आश्वस्त किया और पूर्णमासी अपने गई। तो अब दूसरा दिन हो गया, रात्रि की दो घड़ी अवशिष्ट है, अभी से बिजेंद्र नंदन के मथुरा जाने की तैयारी होने लगी। बिजेंद्र की भी इच्छा नहीं है, ब्रजरानी भी चाहती है नहीं जाए, पर कंस को राजी जो करना है। तो बड़ा उपहार लिया, छकड़े के छकड़े भरवा लिए गए। अब वो जब सब छकड़े भर गए, तो उनको खींच खींच कर अब जो गोप हैं वो राजपथ पर सड़क पर ला रहे हैं, और ब्रजेश्वर जो है बड़े जब बलवान जो गोप हैं उनको बुलाते हैं, तो सबकी पीठ पर हाथ रख के कहते हैं कि देखो भैया अब हम तो जा रहे हैं अब, और अब तुम जो हो यहां के संभाल रखना। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगत नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दासम कुरुद्वह। तो नंद बाबा ने सब बलवान बलवान गोपों को बुलाया और बुला करके सबकी पीठ ठोकी, बड़े तुम बड़े बहादुर हो, ये किसी का उत्साह बढ़ाया जाए तो काम ठीक करता है। तो उत्साह बढ़ाया कि तुम बड़े बहादुर हो, सबके लिए स्थान निर्दिष्ट कर दिए, तुम अमुक जगह रहना, तुम अमुक जगह रहना, सब पैरा ठीक कर दिया। और प्रत्येक गोप के फिर कान में भी कुछ अलग अलग कहा कि देखना न मालूम किसी नए वेश में कोई आ जाए तो सावधान रहना, कहीं मेरी अनुपस्थिति में और कोई विपत्ति मेरे पुत्र पर आ न जाए। इस प्रकार पूरी व्यवस्था कर चुकने के बाद कंस का कर चुकाने के लिए ये नंद बाबा तैयार हुए। एक पहर दिन चढ़ने तक सारी तैयारी हो गई, पर नंद बाबा को बड़ी चिंता मन में। अब वो जहां पर अधिक प्रेम होता है वहां अनिष्टा शंका हुआ करती है, ज्यादा प्रेम जहां पर होता है वहां बुरी बात सोचती, कहीं कुछ हो न जाए, कहीं कुछ हो न जाए। तो सोचा मैं कंस के यहां जा रहा हूं और कहीं कंस ही मुझे ही मार डाले तो मैं कहीं न देख पाऊं, फिर एक बार देख तो आऊं। यूं जाते जाते ही फिर लगड़े गए सूचकागार में, जा पहुंचे बजरानी ने शिशु को लेकर इनकी गोद में रख दिया। वे बार बार उनका मुखचंद्र देखने लगे, पर अब कहां तक देखे, हृदय से लगा लिया, व्याकुलता और बढ़ गई। पास में दाई खड़ी थी, बड़ी बत्सला दाई भादुरी, तो वो बोली कि देख लल्ला, प्यार से तेरे पिताजी तो अब जा रहे हैं मथुरा, जल्दी आवेंगे, तो तू जरा हुक्म दे दे इनको कि जाएंगे। दाई बोली लल्ला से कि लल्ला जरा हुक्म दे देना तू, ये तेरा हुक्म चाहते हैं। तो जब ये धात्री ने कहा तो कहते ही एक आश्चर्यमयी बाल भंगिमा के द्वारा श्याम शिशु का मुखमंडल भर गया और उस लाल लाल होठों की अरुणिमा में ही और मानो एक मंद मुस्कान छा गई। गोपेश ने देखा स्पष्ट कि इस श्याम नील नीलमणि के मुख पर हंसी आ गई है। तो इस मुस्कान ने तो बस उनकी चिरस्थिर बुद्धि को चंचल बना दिया, अब स्थिर होने का अवकाश नहीं। चंचलता को लिए ही वे दौड़ पड़े वहां से और जा पहुंचे ये मथुरा में। अब गोपाल चंद्र की बात छोड़ देते हैं, मथुरा में जा पहुंचे, मथुरा में जा करके और ये ठहरे तो वसुदेव जी तो सप्ताक में थे ही, दूत पहले जा ही चुका था। तो वसुदेव जी को जब मालूम हुआ कि नंदे वसुदेव उपश्रुतियो भ्रातरम नंद मागतम ज्ञात्वा दत्त करम राज्य यू तदव मोचनम, तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय देह प्राणमिवागतम प्रीत प्रियतमं दोरभ्याम सस्वजे प्रेम विह्वल पूजित सुखमासीन दृष्ट्वा नामयमादृतः प्रसक्तभिः स्वात्मजयो हृदमाह विशांपते। दृष्ट्या भ्रात प्रभयसा इदानीं प्रदर्श्यते प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजाय समुपद्यत दृष्ट्या संसार चक्रेऽस्मिन् वर्तमान पुनर्भवम् उपलब्धो भवान् अद्य दुर्लभम् प्रियदर्शनम्। नैकत्र प्रिय संवासः सुहृदां चित्तकर्मणां ओघेन व्यूहमानानां प्लवानां सुतसो यथा कच्चित् पशव्यं निरुजम् भूर्यं उत्तम विरुधम बृहद्वनम तदधुना यत्रास्ते तम सुहृदवतः। वसुदेव जी को मालूम हुआ कि हमारे प्यारे भाई, उनमें बड़ी मैत्री रही कि हमारे प्यारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और ये राजा कंस को कर भी दे चुके हैं। तो नंद बाबा जहां ठहरे थे वहां वसुदेव जी पहुंचे। वसुदेव जी को देखते ही जब सामने देखा तो नंद जी का प्रेम उमड़ आया, सहसा उठकर ऐसे खड़े हो गए मानो मुर्दे में प्राण आ गया, मतलब शरीर में जैसे प्राण आ गया हो इस प्रकार उठे। और बड़े प्रेम से उन्होंने अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से चपका लिया। प्रेम से नंद बाबा अत्यंत विह्वल हो गए। प्रीत प्रियतम दोरजम सत्वजे प्रेम विह्वल, प्रेम विह्वल हुए, प्रेम से अधीर हुए, इनका रोमांच छुआया, इनके आंखों में प्रेम के आंसू आ गए, हर्षोद्गम इतना भारी हुआ कि अपने आप को संभाल भी नहीं सके और दोनों हाथ फैलाकर उनको हृदय से अपने लगा लिया, चिपका लिया और बड़ा स्वागत सत्कार किया। ये स्वयं गए हुए थे पर अपनी जान में पूरा स्वागत सत्कार किया, बड़े प्रेम पूर्वक बैठाया। तो जब आदर पूर्वक आराम से वसुदेव जी बैठ गए, अब वसुदेव जी का भी मन तो लगा रहा था अपने पुत्र में, वो जल्दी से जल्दी उसका कुशल समाचार जानना जो चाहते थे। देर हो रही है पर नंद बाबा ने कुछ कहा नहीं और प्रेम से जब नंद बाबा मिले आनंद से, तब ये मन में तो आ गया, भास तो हो गया कि कुशल है। कुशल नहीं होती तो इतने प्रेम से मिलते कैसे, प्रेम से मिले आनंद छाया है तो बच्चा है तो बहुत प्रसन्न। लेकिन अपने पुत्र में चित्त लग रहा था तो वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर फिर पूछने लगे। उन्होंने कहा जिष्ट्या भ्रातः प्रवयस इदानीम अप्रदस्यते प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजायत संपद्यत। भैया नंद देखो तुम्हारी अवस्था तो बड़ी हो गई थी और अब तक तुम्हें कोई संतान हुई नहीं, यहां तक संतान की आशा भी नहीं रह गई, अब क्या संतान होती। पर बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान की बड़ी कृपा कि तुमको संतान प्राप्त हो गई। अभी खुलकर नहीं कहते कुछ भी, तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। और फिर ये भी बड़े आनंद की बात हुई, दृष्टिया संसार चक्रिय स्मिन वर्तमान वर्तमान पुनर्भव उपलब्ध भगवान अद्य दुर्लभम प्रिय दर्शन। ये बड़े आनंद का विषय है कि हम लोगों को भी आज मिलना हो। संसार में सच्चे प्रेमियों का मिलना जो है ये बड़ा दुर्लभ है। तुमको संसार का मिलन कुछ मिलन है ही नहीं, और यहां जो प्रेमी है जिन्होंने परस्पर एक दूसरे के लिए अपना त्याग कर दिया है उनका नाम प्रेमी। प्रिय 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 कौन, जो प्रिय करे सो प्रिय, जो अपने प्रियतम के लिए अपना परित्याग कर दे वो प्रिय, और नहीं तो स्वार्थी। तो ऐसे प्रियों का मिलना जो है ये बड़ा बड़ा कठिन है, और संसार का ये चक्कर ही ऐसा है, इसको तो एक तरह से पुनर्जन्म ही मानना चाहिए। नैकत्र प्रिय संवास असुरदाम चित्रकर्मणाम ओगे नदी हो माना नाम प्लवा नाम सतो यथा। जैसे नदी के प्रवाह में बहते हुए बेड़े सदा एक साथ नहीं रह सकते, तिनके तिन एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ये सगे संबंधियों का संसार में प्रेमियों का एक स्थान पर रहना संभव नहीं। आज मिले कल बिखर जाए, तो सबके प्रारब्ध अलग अलग होते हैं, कौन किसको कहां ले जाता है प्रारब्ध कर्म अपना कौन जानता है। और भाई ये तो बताओ सब ठीक है ना, राजी खुशी सब है ना। कचित सव्यम निरुजम भूर्यम तुम विरुधम बृहद वनम तदधुना यत्रास्ते तुम सूर्य बता। आजकल तुम जिस महावन में निवास कर रहे हो वहां तुम तुम्हारे भाई बंधु तो तुम्हारे सुजन आदि सब साथ रहते ही हैं, उसमें जल घास लता पत्र ये तो सब ठीक है ना, खाने पीने का आराम है ना गायों को और तुम लोगों को सबको, जल ठीक है, घास ठीक, खाने पाने ठीक। और वो वन जो है वो तुम्हारे जो पशु हैं गाय इत्यादि उनके अनुकूल है ना, वहां कोई रोग वोग तो नहीं फैला है। और अब अपनी बात कहें कैसे, श्री कृष्ण की बात कहें कैसे, तो बलदेव के नाम पर कहते हैं भ्रातर मम स्वतः कश्चिन मात्रा से भवत ब्रजे तातम भवंतम मनवानो भवद्भ्या मुगलालिता। भाई मंदिर मेरा छोटा लड़का है ना, वो अपनी माँ के साथ तुम्हारे यहाँ रहता है ब्रज में, तो उसके माँ बाप तो तुम ही हो भैया, मेरे में तुमने फर्क क्या है। तुम और यशोदा जी उसको उसका लालन पालन सब किया करती हैं, तो वो तो तुम ही लोगों को तो माँ बाप मानता होगा ना, वो ठीक है ना, अच्छी तरह से है ना वो। तुम सब त्रिवर्गो विहित सुदो हिणभावित नतेषु कृष्यमानेषु त्रिवर्गोर्थाय कल्पते। कहते हैं कि भाई मनुष्य के लिए वही धर्म, वही कर्म और वही अर्थ, अर्थ धर्म काम, ये वही शास्त्र विहित हैं जिसके जिनके द्वारा इनके स्वजनों को सुख मिले, जिनके द्वारा स्वजनों को सुख हो वही तो धर्म धर्म है, और वही काम काम, वही अर्थ अर्थ, जो अर्थ केवल अपने लिए हो अपने स्वजनों के लिए ना हो वो अर्थ अर्थ नहीं तो धर्म धर्म नहीं। तो भाई धर्म अर्थ काम वही शास्त्र विहित हैं जिनके द्वारा स्वजनों को सुख मिले और जिनसे केवल अपने सुख चाहते हैं। बोले ऐसा धर्म करे हमको सुख मिले, ऐसा कर्म करे हमको सुख मिले, इतना धन कमाए कि हमें सुखी हो जाए। तो बोले इस प्रकार का जो अर्थ धर्म काम है, ये जो त्रिवर्ग है जिसको अर्थ कहते हैं, ये अर्थ हितकारी नहीं है तो क्लेशकारक ही होता है। जो केवल अपने लिए स्वजनों के लिए न हो वो अर्थ, वो धर्म और वो काम सब क्लेशकारक हैं। प्रकारांतर से कहते हैं कि तुम मेरे बंधु हो और रोहिणी जी तुम्हारे यहां रह रही हैं और बलदेव जो है वो तुम्ही को माँ बाप मानता है, तो तुम धर्मात्मा हो ही, तुम्हारा तो अर्थ धर्म काम सारा शास्त्र विहित है ही, तो सब मंगलमय होंगे, तुम मंगल ही करोगे। तो ये जब बात सुनी नंद बाबा ने, नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए और नंद बाबा सहानुभूति प्रकट करने लगे। छह छह बच्चे मारे गए थे ना, बात सुन ली थी वसुदेव जी की, सारी खबर इनको थी। तो नंद जी ने सहानुभूति प्रकट करते हुए, समवेदना प्रकट करते हुए कहा, अहो ते देव की पुत्रा कंसे न बहवो हताह एका वशिष्ठा वरजा कन्या सात दिवंगता नूनम यदृष्टि निष्ठो यम दृष्टि परमो जन अदृष्टि मात्मस्तत्व यो वेद न समूहति। नंद बाबा बोले कि भैया वसुदेव जी, कितने दुख की बात है कि कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्रों को मार डाला, बड़ा निर्दयी कंस, और बिचारी छोटी सी एक कन्या बच रही थी, वो क्या उसे मार डालती, पर वो कन्या भी स्वर्ग से धार गई, उसके हाथ से न बच सकी। तो भैया क्या बताऊं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि प्राणियों का जो सुख दुख है ये सारा भाग्य पर निर्भर करता है, कोई बचा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। तो इसलिए जो आदमी सत्व को जान लेता है कि प्रारब्ध में होता है सो होता है, सुख दुख का कारण भाग्य ही है, उन सुख दुखों से मोहित नहीं होता, नहीं तो कहीं सुख आने पर अभिमान कर बैठता है, दुख आने पर रोने लगता है, ये उसकी मूर्खता है। तो जो होना है सो होता है। तो भैया तुमसे क्या कहें, ये नहीं कहा कि शोक मत करना, इतनी बात कह करके ही और नंद बाबा रह गए, अपने आप बुद्धिमान वसुदेव जी हैं। तो वसुदेव जी ने इन सब बातों को तो कोई का गुस्सा नहीं दिया, उनके मन में ये लग रही कि ये कूटना गई है और कहीं बच्चे पर किसी प्रकार की विपत्ति ना आ जाए तो जल्दी वापस भेजो नंद को। तो सारी बातें सुनी अनसुनी करके किसी का उत्तर न दे करके और वसुदेव जी बोले, करो वही वार्षिको दत्तो राज्य दृष्टा वयम सब निस्थेयम गोकथम संतुत पाताश्च गोकुले। वसुदेव जी ने कहा, भाई नंद जी अब तुम ना, तुम्हारा काम तो हो गया, कंस राजी कुछ तुमसे बातचीत की ना, बोल बोल हमसे तो राजी बोला, बोले तब तो फिर ठीक है, तुमने सालाना कर तो उसको दे ही दिया और मेरा मन बहुत मिलने का था, तो हम दोनों भी मिल ही लिए, अब यहां ज्यादा ठहरना ठीक नहीं लगेगा। गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, हो रहे कह दिया, बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, तो तुम जल्दी से गोकुल लौट जाओ। सुखदेव जी कहते हैं, इति नंदा देव गोपा प्रोक्ता से छोड़ना ययु अनुभिरुद्युक्त मनुज्ञात गोकुलम। सुखदेव जी बोले, परीक्षित जब सुखदेव जी ने इस प्रकार कहा तो नंदा आदि ने सोचा कि जल्दी चलना चाहिए, तो गोपों ने उनसे अनुमति लेकर के छकड़े जोड़ लिए और सबके सब सवार होकर के गोकुल की तरफ चल दिए। ये पांचवा अध्याय समाप्त। अब शुरू होता है पूतना प्रकरण, पूतना उद्धार, ये छठे अध्याय में है और छठी का ही दिन है। श्री शुक उवाच, नंद पतिवत शौरे नम्रशेष विचिंतयन हरिं जगाम शरणं उत्पातागम संकितः कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्च चारण्यघ्नन्ति पुरग्रहान् वर्गादिषु यत्र श्रवणादीनि रक्षो घ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्यादि धान्यश्च तत्र हि सा खीचर्ये यदुपस्थित्य पूतनानन्द गोकुलम् जोषित्वा मायात्मानं प्राविशत् कामचारिणी। अब पूतना उद्धार पर देर तो लगे ही, पर कुछ विस्तार से बातचीत हो जाए। वैष्णव तोषणी के अनुसार कहते हैं, अब ये पांच अध्याय में चार अध्याय में इतने बीत गए, इतने पेड़ ही, तो ये कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण के जन्म के दूसरे दिन कंस ने अगासुर बकासुर बक प्रलंब केशी धेनु इत्यादि सारे असुरों को इकट्ठा किया और मंत्रणा की, और ये तय हुआ कि 10 दिनों के अंदर मथुरा मंडल में जितने भी बालक पैदा हुए हैं सब मार दिए जाएं। उसी दिन से काम शुरू हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात ये हुई कि मथुरा मंडल में जितने कृष्ण भक्त थे रहने वाले, उनमें से किसी का बच्चा नहीं मरा, एक भी शिशु इनका नहीं मरा। जितने असुर भावापन्न व्यक्ति थे, अब ये जितने राक्षस गए मारने के लिए, उन लोगों को उनका घर तो दिखा ही नहीं, और जो कंस पक्षीय लोग थे, जो कंस के दल वाले, उन्हीं का घर दिखा, तो उनके बच्चे बड़े होंगे असुर तो बनेंगे ना। असुरों के द्वारा असुरों का विनाश कराया योग माया ने। योग माया ने वहां इस प्रकार की व्यवस्था की, इनकी आंखों पर इतना जादू फेर दिया कि श्री कृष्ण के भक्तों का जो घर था जहां बच्चे हुए, वो तो इनको दिखे ही नहीं, याद आया ही नहीं, उधर मुंह ही नहीं गया इनका। और जो कंस के पक्ष वाले जितने लोग थे, उन जिनके यहां बच्चे हुए थे, वो सब दिखाई दिए, उनके घरों में ये तमाम घुसे और उन्हीं के बच्चे सब मारे। तो ये श्री कृष्ण जन्म के छठे दिन ये गोपराज नंदनंदन ये नंदराज जो हैं, ये कंस को कर देने के लिए गए, और ये कंस को कर उन्होंने दे दिया। उसी दिन उतना बालघातिनी राक्षसी को रात्रि के समय भेजा गया। उतना को भागवत में खेचरी कहा है। तो उतना जो है ये कामचारिणी थी, माने मन माना वेश बना सकती थी, राक्षसी थी ना, तो जिस प्रकार का चाहे उस प्रकार का वेश धारण कर सकती थी। तो ये उलूकी गुगुनी है, उलूकी के रूप में ये रहती, बहुत लंबी चौड़ी रही, बड़ी विशाल रही। तो ये उड़ करके गोकुल में पहुंची और वहां जाकर के इसने रूप धारण किया, बड़ा सुंदर। तो इसने रमणी का रूप धारण किया। ये कथा आती है कि महाराज बलि के यहां जब वामन जी गए, छोटे से सुकुमार बच्चे होकर दान देने के लिए उस समय उनके लड़की थी बली के रत्नावली है। इस छोटे से बच्चे को जब देखा उसने, तो उसके मन में बच्चे के प्रति स्नेह पैदा हो गया बामन के प्रति। कैसा करके संगीता में ब्रह्म विवर्ती में तो बच्चे के प्रति स्नेह पैदा हो गया। उसके मन में आया कि ये अगर मेरा बेटा होता और मेरे स्तन का दूध पीता तो बड़ा आनंद आता। ये उसके मन में मातृभाव पैदा हो गया। जो मातृभाव करके उसने बामन की ओर देखा तो बामन भगवान तो सब जानते थे, उन्हें कह दिया तथास्तु, मन ही मन कह दिया कि होगा। इसके बाद जब बामन भगवान ने तीन पैरों से सारी पृथ्वी को माप लिया, सारे त्रिभुवन को माप लिया और बलि को बांध दिया, तो उसी रत्नावली का भाव बदला। उसके मन में द्वेष आ गया। उसने कहा कि अगर ये मेरे स्तन को पीता तो मेरे स्तन का जहर देकर भी इसको मार डालती। तो भगवान ने कहा कि आधी बात तुम्हारी ये भी सत्य होगी, मार तो ही डालोगी पर जहर पिलाओगे जरूर। लेकिन उसके मन में जो मातृभाव आया संकल्प से ही, तो भगवान ने ये सोच लिया, उस निश्चय कर लिया कि इसको माता की गति देनी है। तो ये ब्रज में आकर के ये जो देवी का रूप बनाया इसने, इसका ये अर्थ नहीं कि ब्रज में कोई माया चल सकती है। जहां मायापति स्वयं हो वहां माया चल नहीं सकती, पक्षियों की माया ही चलती, दूर दूर माया रहती है। पर भगवान की योग माया जब स्वयं चाहती हो कि यहां ये माया ऐसी ही बने, नहीं तो उसका उद्धार कैसे होता। इसलिए ब्रज में भी भगवान की आज्ञा से, भगवान की सम्मति से ही ये सारी लीला पूतना की संपन्न हुई।